તારીખ 15-10-1993 શ્રી મદ્રાસ ચંદ્ર પત્રાંક 467 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 35.
ત્રિભુવનભાઈ કરકે ભારતીય મુમુક્ષ ઉપર લખા ગયા પત્ર અનાદિ કાલ સે વિપર્ય બુદ્ધિ હોને સે और ज्ञानी पुरुष की जितनी ही चेष्टाएं अज्ञानी पुरुष जैसे दिखाई देने से ज्ञानी पुरुष के विषय में विभ्रम बुद्धि हो आती है। पत्र का सब्जेक्ट क्या है कि ज्ञानी पुरुष पहचाना नहीं जाता और किस तरह से ज्ञानी पुरुष पहचाना जाता है, ये पत्र का विषय है। तो शुरू से वो बात लिया है कि क्यों पहचाना नहीं जाता है, ज्ञानी पुरुष तो होते हैं फिर वो पहचानने में क्यों नहीं आता। तो एक तो जीव की बुद्धि का विपर्यास है, अपनी बुद्धि में मति में इतनी विपरीतता है कि वो विपरीतता को लेकर के ही अपना सब अकाउंट बनाता है दूसरों के विषय में। उसमें ज्ञानी अज्ञानी सब आते हैं। जैसे हमारे यहाँ कहवत है कि दृष्टि वैसी सृष्टि, तो हर जीव अपनी दृष्टि से दूसरे को नापता है और ऐसा होना अनिवार्य है सबों के लिए। जैसी जिसकी दृष्टि वैसी उसकी नापने की बुद्धि हो जाएगी। तो अज्ञानी को अनादि से विपर्यास है अपनी बुद्धि में, अपना ही अहम कर रहा है, अपनों के भी नुकसान कर रहा है, उतना विपर्यास तो खुद का ही है। जैसे हम विचार करें अनंत काल का, तो परिभ्रमण के चक्कर में आए हुए जो हम लोग हमारे जीव हैं उसमें अनंत अनंत काल तो निगोद में ही बीता है, वहीं जन्म मरण हुआ। एक श्वासो श्वास में 18 वक्त जन्म मरण होता है उतने काल में, लेकिन कर्म भी वही आयुष बनता है निगोद का, वही जन्म होता है। ऐसे परिणाम होते हैं निगोद के लायक, वही जन्म परम चालू रहता है, काल तो दिन निकल नहीं पाता। शास्त्रकार ऐसा कहते हैं कि अगर कोई दो इंद्र भी हुआ ना, दो इंद्री यल होती है, तो समझ लो को अंधे को रत्न मिल गया। क्या अंधे को रत्न मिलता नहीं, क्योंकि वो तो देखता नहीं है कि रत्न का प्रकाश कैसा होता है। उनको तो जब पैर में लगता है सब पत्थर ही पत्थर है। अंधे को रत्न मिल जाता है, ऐसा दो इंद्रिय का वैल्यू लिया है। और सम्मी पंचेंद्रिय होना, उसमें भी सत्यदेव गुरु शास्त्र मिलना, क्योंकि सम्मी पंचेंद्रिय मनुष्य होता है पूरा जीवन पाप में बिता करके अधोगति में चला जाता है। देखिए एक नजर डाल दीजिए पूरे समाज पर, तो पता चल जाएगा કે આપણે સંયોગ કે પીછે સંયોગ કો બઢાને કે પીછે ઠીક રખને કે પીછે ઇસકા સંરક્ષણ કરને કે પીછે જો ભી આયુ જાતી હૈ પૂરી કે પૂરી અધોગતિ મેં ઇસકા સમજ ચલા જાતા હૈ કે યે દુર્ભાગ્ય હૈ બડા એસા હોના કે મનુષ્ય કા બહોત બડા દુર્ભાગ્ય હૈ ક્યોંકિ દો ઇન્દ્રિય હોને કા ચાન્સ નહીં હૈ જબ અનંત કાલ મેં તો ફિર યે મનુષ્યત્વ મિલે જિસે હમ સિદ્ધ પદ કો રિઝર્વેશન કર સકતે હૈ ભલે અભી નહીં યહાં હુએ તો રિઝર્વ તો હો જાતા હૈ ફિર ભી પાપ મેં જીવન બિતા કરકે અગર ચલે જાતે હૈ અધોગતિ મેં ફિર નિગોદ કી તૈયારિયાં હો જાતી હૈ અલ્પ કાલ મેં પહોંચ જાયેંગે બહોત બડા દુર્ભાગ્ય ઓર સૌભાગ્ય વો હૈ કે સચ્ચે દેવ ગુરુ શાસ્ત્ર મિલે अपना जीवन परिवर्तन हो जाए जेही बदलने से सत्पुरुष मिले सच्ची चीज मिले और मार्ग की समीपता हो जाए या मार्ग की प्राप्ति हो जाए तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होता। अब यहाँ कहते हैं कि सत्पुरुष मिलता है तो भी ऐसी हालत खराब हो जाती है मति विप्रयास के कारण। अनादि काल से विपर्ययी बुद्धि होने से एक तो ये बात है अपने उपादान की जो मुख्य क्षति है वो इस प्रकार की है। और ज्ञानी पुरुष की कितनी ही चेष्टाएं अज्ञानी पुरुष जैसे दिखाई देने से ज्ञानी पुरुष के विषय में विभ्रम बुद्धि हो आती है, सहज हो जाती है। हम तो नहीं मान सकते, हमने तो ऐसे बोलते हुए दिखा, ऐसे काम करते हुए दिखा, ऐसे व्यापार करते हुए, अरे अन्याय करते हुए दिखा, गुस्सा क्रोध करते हुए दिखा, कई मत है दिखने में तो आ जाएगी, उसको पहचान नहीं सकता। ये प्रश्न अवश्य यहाँ हो सकता है कि अनादि से जो हमारी बुद्धि विप्रयास है तो फिर इसका क्या इलाज है। ज्ञानी तो जैसा उदय है वैसे प्रवर्तन बाहर में करेगा, इसका भी कोई इलाज तो अपने हाथ में तो नहीं है, लेकिन इसके लिए तो समझे कि कुछ न कुछ रास्ता सोचें। लेकिन विप्रयास का क्या करें, विप्रयास कम होने में सबसे बड़ा कोई साधन है तो ये जीवन परिवर्तन का है। अगर हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा जीवन ही बदल करके हमें हमारा काम कर लेना है तो वहाँ से जो विप्रयास है वो टलने लगेगा, जाने लगेगा। पर अवलोकन से तो जो विप्रयास है वो सामने आकर के अपना स्वरूप दिखाने लगेगा कि मैं ऐसा हूँ, तो फिर उसको जाना आसान है। क्योंकि ये विप्रयास ऐसी चीज है कि खुद को पता नहीं चलता कि हमारे में क्या विप्रयास है। जीवन परिवर्तन के ध्येय से और इसके कारण से हुआ जो अवलोकन है इससे इसका जाने की तैयारी सब होने लगती है। ऐसा नहीं हो सकता है, यानी उस वहाँ तक तो ठीक है, उसको कैसा भी कह देते हैं, विरोध भी कर लेते हैं, विराजना भी करते हैं, करते हैं लोग, तब नहीं करते हमारे यहाँ करते। ज्ञानी पुरुष और ज्ञानी पुरुष की चेष्टाएं ऐसी होती, अथवा जीव को ज्ञानी पुरुष के प्रति उस चेष्टा का विकल्प आया करता है, शंका रहती है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, फिर ऐसा क्यों। पर ऐसा ही होता है कि सभी ज्ञानियों का विरोध हुआ है तो कुछ न कुछ अफवाहें भी चलती हैं उनके विषय में, जिससे भी लोग गुमराह होते हैं या गलत फहमी पैदा हो जाती है, कई प्रकार की बात होती है, इससे भी विकल्प आया करता है। यदि दूसरी चेष्टाओं से ज्ञानी पुरुष का यथार्थ निश्चय हुआ हो, दूसरे मैंने क्या, कि ज्ञानी के जीवन में ज्ञान दशा के लायक भी कुछ बातें तो होती है, जैसे आत्मज्ञान होता है तो इनकी वाणी में कुछ फर्क पड़ता है, इनके अंतरंग जीवन में थोड़ा फर्क पड़ता है, तो परिचय से पता चलता है। तो कुछ दूसरी बातों से, दूसरी दृष्टियों से ज्ञानी पुरुष का यथार्थ निश्चय हुआ हो तो किसी विकल्प को उत्पन्न करने वाली ऐसी अज्ञानी की, ऐसे ज्ञानी को उन्मत्त आदि भाव वाली चेष्टा प्रत्यक्ष दिखने में आए तो भी दूसरी दृष्टि के निश्चय के बल के कारण वह चेष्टा अविकल्प रूप होती है। क्या कहा? तो अगर दूसरी दृष्टियों से ज्ञानी पुरुष का निश्चय हुआ हो तो किसी विकल्प को उत्पन्न करने वाले ऐसी ज्ञानी की उन्मत्तादि भाव वाली चेष्टा प्रत्यक्ष दिखने में आए तो भी, कभी कभी बीमारी आ गई मानो, और बीमारी में ज्ञानी की ऐसी चेष्टा हो तो विकल्प हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? ज्ञानी है फिर भी ऐसा क्यों हुआ? विदना में या बेशुद्धि में, बाहर की बेशुद्धि होती है, भीतर की बेशुद्धि नहीं होती, शुद्धि आ जाती है। कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ भी, किसी बीमारी से, एक्सीडेंट से, कई प्रकार से विशुद्धि हो सकती है। बात
अंतर की शुद्ध रहती है,
हाँ परिणति, हाँ परिणति उपयोग में बेशुद्धि है और परिणति में पूरी शुद्धि है या अंतर साधन है, स्वरूप कोई फर्क नहीं। अंतर में जागृत दशा है, ऐसे बहुत अलौकिक दशा है, दान नहीं कर सके, इसलिए तो उन्होंने बात लिया। ऐसी बात क्यों उठाई? ये संभव है, ये बात होना पूरा पूरा संभव है। ऐसी परिस्थिति में भी दूसरी दृष्टि के निश्चय से, मैंने क्या यथार्थ निश्चय हुआ हो, ऐसी जो दूसरी दृष्टि है, ऐसा निश्चय के बल के कारण वह चेष्टा अविकल्प रूप होती है, वो निकाल देता है। कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं, हम तो जागृत होते हैं, मुझे परिचय है, मुझे मैं पहचाना है, और तब में जागृत ही हो सकते हैं। दूसरा विकल्प मुझे करना नहीं चाहिए, निर्विकल्प हो जाना चाहिए। इनकी दशा के विषय में शंका तो नहीं, विकल्प भी नहीं उठे, निर्विकल्प हो जाना चाहिए।
तो भाई एमरेज थी जाए, बेशुद्धि थी जाए, ज्ञानी प्रवृत्ति परिणति शुद्ध चलती हो। अच्छा, हवे मुमुक्षु होय नारी अवस्था थाय અને જ્ઞાની આવે કે સંભળાવે ત્યારે તો ને ઈ જીવને કઈ
કઈ ખબર ના,
કઈ ખબર ના,
શુદ્ધિ હોય તો ખબર પડે, શુદ્ધિ હોય તો બધું નકામ જાય। એટલે તો જ્યાં સુધી શુદ્ધ સાન છે ત્યાં સુધી દશા કેળવી લેવાના ચાન્સ છે। જીવ કો જહા તક શુદ્ધ સાન હૈ વહાં તક તો કામ કર લેના કા ચાન્સ હૈ, બાકી ગડબડ હો જાતી, બેવસ હો જાતા, ક્યા કરે, ઉસકા કંટ્રોલ મેં નહીં, પરિણામ હો જાય। परिणति और उपयोग दोनों स्वतंत्र है, एक पर्याय, दोनों मिलके एक पर्याय होने पर भी पूरी पर्याय स्वतंत्र है, और पर्याय के दोनों अंश भी स्वतंत्र है। ऐसी परिस्थिति जैसे हम इधर आत्मा की चर्चाएं करते हैं तो उपयोग हमारा क्या है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा परिपूर्ण है, आनंद स्वरूप है, ऐसा हमारा उपयोग लगाते हैं। परिणति में क्या है कि मैं तो मनुष्य हूँ, मैं तो फलाना हूँ, ये परिणति गई नहीं,
पूरा संसार रस जो कदम पड़ा।
परिणति में मैं संसारी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये बात, ये परिणति जमी हुई है। तो हम जो विचार करते हैं उसका कोई फल नहीं आता, तो निष्फल जाता है। मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, अनुभव नहीं होता है इसका। उपयोग में विकल्प होता है, उपयोगात्मक पण विकल्प होता है, अनुभव नहीं होता है, तो वो तो दोनों स्वतंत्र है। जैसे अज्ञानी का ये विकल्प बेकार जाता है, ठीक उसी तरह ज्ञानी को संसार के कारण रूप जो भी प्रवृत्ति है उसके जो भी विकल्प है वो बेकार जाता है, क्योंकि भीतर में मैं एक आत्मा हूँ, शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप, वो परिणति जमी हुई है, तो उसको जो बाहर के विकल्प है संसार के गृहस्थी के जो भी है वो बेकार जाते हैं, उससे उसका कोई खास कर्म बंधन नहीं होता है और मात्रा में होता है उसे निकल जाएगा, उनकी कोई गिनती नहीं है मोक्ष मार्ग में शुभ शुभ दोनों, परंतु बहुत बलवान है। इसलिए शास्त्र में बहुत समर्थ दृष्टांत आते हैं, ये रामचंद्र जी का है, बहुत बाहुबली का है, चक्रवर्तियों का है, क्यों आया, वो लोग लड़ाई किया, सन्नी पंचेंद्रियों की हिंसा हुई जिस लड़ाई में, ऐसी लड़ाई लड़ी, फिर भी इसकी परिणति और है, विकल्प उपयोग और कुछ, दोनों स्वतंत्र है, परस्पर विरुद्ध हुए हैं और स्वतंत्र है। ये विकल्प और उपयोग है वो कमजोर है, परिणति बलवान है, बलवान की जीत होती है, निर्बल है उसकी हार होती है, सीधी बात है। हाँ ठीक है, उसका एक सिद्धांत है, भावना उपयोग और परिणति, ये बात चली है अपने सुबह के विक्टोरिया के चर्चा में, बात चली भावना उपयोग और परिणति। जैसे हमारी परिणति संसार की है ना, जैसे संसार में पकड़ते हैं, परिणति संसार की हो गई है, अब हमारे आत्मस्वरूप की भावना हमारे में जागृत हो जाए और उस आत्मस्वरूप की भावना जीवन परिवर्तन के बाद ही आएगी, भावना जिस अनुपात में आनी चाहिए, जिस मात्रा में आनी चाहिए, तो ये बदले बिना आ नहीं सकते। नहीं बदलने से जिस अनुपात में वो भावना पैदा होती है, वो भावना से बार बार उपयोग उसी तरफ जाता है, हर हालत में ऐसा ही उपयोग बना रहता है। तो भावना बार बार उपयोग को भावना के तरफ खींचता है, भावना क्या करती है, उपयोग को खींचती है बार बार, पर बार बार भावना पूर्वक उपयोग होने से परिणति इसकी बन जाती है। तो क्या होगा कि इस भावना के दौरान शुद्धोपयोग हो जाएगा एक तरह, और शुद्धोपयोग होने से उस शुद्धात्मा की परिणति बन जाएगी, उसी को ज्ञान के साथ। तो परिणति भी उपयोग पूर्वक होती है, लेकिन कैसा कि परिणति से भी बलवान उपयोग हो गए तो वो परिणति पूरी पलट जाती है, ऐसी बात है। तो इसकी साइकिल है पूरी, भावना से उपयोग, उपयोग से परिणति, ऐसा वो क्रम चलता
है।
हाँ, फिर भी उसका जो लॉजिक है, कॉजुअल चेन है, वो उस प्रकार की कॉजुअल चेन ऐसे होती है, तो भावना उपयोग का कारण बनती है और बलवान उपयोग परिणति का कारण, इसका कारण है कि परंपरा ऐसे बैठती है। यहाँ तो क्या है कि मुमुक्षु जीव को अगर ज्ञानी पुरुष का यथार्थ निश्चय हुआ हो तो कि पागल जैसा दिखे, जैसे रामचंद्र जी का दशा है, लक्ष्मण जी का देह को 6 महीना कंधे पर रखकर वो घूमे, छोड़ा नहीं, खाते नहीं, पीते नहीं, सोते नहीं, 6-6 महीना इतना राग था अपने बंधु का, चारित्र मोह का राग था, दर्शन मोह का राग नहीं था। और सीता जी के वियोग में रोने लगे तो भी ये चारित्र मोह का राग था, दर्शन मोह का राग नहीं था। ऐसा फर्क पड़ता है। जी हाँ, दर्शन मोह तो व्यतीत हो गया। हाँ, दर्शन मोह से मजबूत रहता है, और दर्शन मोह चले जाने से फिर जो चारित्र मोह बच गया वो पंगु हो गया। कृपाल देव लिखते हैं कि उसकी कमर टूट गई। जिसकी कमर टूट गई है वो एक किलो भी वजन उठाएगा नहीं। वजन तो हाथ से उठाना है, लेकिन ताकत बढ़ती है कमर पे। योग का जो जिसका अभ्यास किया उसको पता होगा, जो कमर है पीछे की साइड में जो है इस जगह पे पूरी कुंडली की जागृति यहाँ से होती है ना, तो सारी बॉडी की जो आधार है वो कमर पे है। कमर पे ताकत की आधार है वो कमर पे। जिसकी कमर टूट गई एक किलो भी वजन वो उठा नहीं सकेगा, उठा से उसको भराड़ निकल जाएगी, करे क्या हो गया। ऐसे दर्शन मोह टूटने से राग बचता बच जाता है। अविरत सम्यक दृष्टि को भी संसारी प्राणी जितना ही राग है जैसा ही राग है, लेकिन कमर टूट गई थी तब राग का देह रह गया, खोखा रह गया, कमर टूट गई। फिर वो राग इतना तंगू है, इतना नीरस है कि उसमें कोई ताकत नहीं। संसार परिभ्रमण करने की ताकत मर गई तो उसका फिर संसार परिभ्रमण जारी का नहीं रहा। यही कारण है
दर्शन मोह में अभाव तो दिखता नहीं, चारित्र मोह के दिखाव ऐसे ऐसे काम करने वाले इतने मोटे दिखाव होते हैं।
कैसे में उन्मत्त आदि भाव वाली चेष्टा प्रत्यक्ष दिखने में आवे, सुनी नहीं हो, प्रत्यक्ष दिखने में आवे। क्या हुआ था देखिए, कृपालु देव का अंतिम दिन अपन देखे तो उन्होंने तो पता चल गया था कि शरीर प्रकृति में गड़बड़ है। तो मनसुख भाई जी अपने छोटे भाई को बोले, मुमुक्ष भी काफी लोग आ चुके थे, बोले तो मुझे चारपाई पर से पलंग पर से उठा करके खुद उठ सके ऐसी सारी शक्ति नहीं थी, बहुत कमजोर हो गए थे। उठा करके आराम चेयर पर बिठा दो, ऐसे कुर्सी जो लगानिया में है वही कुर्सी है, हम दे रख। फिर वो बोले कि मैं मेरे आत्मा में अभी लीन होता हूँ, मेरे से कोई बात नहीं कर। एक छोटा सा धोती जैसा कपड़ा था वो तो पूरा का पूरा ओढ़ लिया, जिससे किसी से इसका भी नज़र होने का सवाल नहीं है और अपना भी नज़र होने का सवाल नहीं। मेरे आत्मा में ये नहीं था, कोई बात नहीं करता। फिर वो अपने समाधि में लग गया। इस बीच में शरीर अवस्था जो प्राकृतिक शरीर की अवस्था है बहुत बिगड़ी, और बहुत बिगड़ी में क्या हुआ कि गले में से आवाज निकलने लगी बड़ी बड़ी। गुजराती में आपने कैसे हड्डियों बोले ऐसा, इसको हड्डियों हड्डी के ये जो हड्डी है पुरुष लोग की हड्डी ऐसे बार दिखती है, तो उसमें से आवाज निकलती है गले में से, और ऐसी निकले कि जैसे बहुत वेदना में निकलती हो ऐसी भी लगे। या किसी को ऐसे लगे कि वेदना बढ़ गई है तो वो उन्मत्त हो गए हैं या राड़ पाते हैं, ऐसा कभी फैन नहीं होता है, ऐसा भी लगे किसी को तो शंका पड़ती है लोगों, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो अपनी आत्मा में घुस गए, उनको पता ही नहीं कि अब शरीर का क्या हो रहा है और क्या होगा, किस क्षण में संयोग रहेगा, किस क्षण में संयोग छूटेगा, उसका भी वो ध्यान रखने वाले नहीं। तो कई लोग शंका करते हैं। मैं एक दिन गुरुदेव के पास बैठा था शाम को, एक बूढ़ा आदमी आया, पगड़ी बंदी पहनी हुई थी, मेरी उपस्थिति में सब एक प्रश्न पूछना है। कि ये श्रीमद जी के विषय में सुना है, ऐसा करके शंका उठाई थी आदमी के, जैसे अपने बकरी बैले बोले ना, એમ કે બાંભરતા હતા આપણે બાંભર ગુજરાતી ભાષામાં, એવી રીતે મૃત્યુ થયું છે, નાની પુરુષનું મૃત્યુ એવી રીતે થાય? આવો પ્રશ્ન પૂછી લો ગુરુદેવને મારી ઉપસ્થિતિ છે. ગુરુદેવ બોલે તમારા કામ નહીં હે સમજને કા. ક્યાં બોલો? કે જ્ઞાની પુરુષ કો સમજને કા તુમ્હારા કામ નહીં હે. બહાર મેં કૈસી ભી શરીર કી અવસ્થા હો સકતી હૈ, वो अपने आत्म समाधि में थे, क्योंकि वो बात तुम नहीं समझता, तो तुम्हारा काम नहीं है, ऐसी शंका नहीं उठाना, मुझे भाव रख लेना, ऐसे शंका मत उठाना. तो ऐसे बनता है. गुरुदेव को क्या हुआ? बहुत कमजोर हो गए थे, तो उम्र भी 91 की थी. तो हमारे वो डॉक्टर साहब थे, वो क्या बोल रहे, तो गुरुदेव आखिरी दिन वो शाम को थोड़ा 4 बजे कुछ थोड़ा सा दलिया वगैरह कुछ लिया होगा, चावल लिया होगा हल्का सा. तो ऐसे लेते 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 इधर हाथ ना जा करके इधर चला जाता था हाथ, या उधर चला जाता था. एक तो अशक्ति भी थी और थोड़ी बाह्य उपयोग में थोड़ी सुखार भी हो गया. एक दो घंटे में तो आयु छूटने की तैयारी थी, बाहर की सावधानी कुछ कम होगी. तो खाते खाते हाथ इधर जाता है या इधर जाता है, इधर जाता है, खुद को ख्याल नहीं रहता था. तो उनको शंका होगी, अपने डॉक्टर थे मुख सूत्र जो सेवा में उधर आए थे, ऐसा क्यों होता है? तुमको नहीं पता, ये तुम्हारा काम नहीं है.
इसी
बात पर सावधानी दूसरी होती, तो कोई मनुष्य ऐसा भी होता है ना. जीवन में गुरुदेव का पुरुषार्थ हमने जैसा अंतिम दिनों में देखा, वैसा पूरे जिंदगी में नहीं देखा. अंतिम दिनों में इतना पुरुषार्थ था, इतना पुरुषार्थ था, ऐसा कभी देखने नहीं आया. ये नजर की चीज है, नजर नजर अलग होती है. ऐसी चेष्टा को प्रत्यक्ष देखने में आए तो भी मुमुक्षु को दूसरी दृष्टि का निश्चय का बल होवे तो उसके कारण वह चेष्टा अविकल्प रूप हो जाती है, उस विकल्प छूट जाता है, निर्विकल्प हो जाता है. विचार करने की चीज अथवा ज्ञानी पुरुष की चेष्टा की कोई अगम्यता ही ऐसी है, अगम्यता मैंने बाह्य ज्ञान में गम्य नहीं होवे. क्षोभम बाह्य क्षोभम में जो गम्य नहीं होवे, ऐसी कोई चेष्टाएं में खूबियां नहीं है, ऐसी चेष्टा की कोई अगम्यता ही ऐसी है कि अधूरी अवस्था से अथवा अधूरे निश्चय से. देखो मुमुक्षु होने पर भी ऐसी योग्यता होती है, अधूरा विचार होता है, विचार की अवस्था अधूरी होती है, पर निश्चय भी दूसरे मानते हैं तो वो भी मानने लग जाते हैं, लेकिन वो उधर की बात है. वो समझा अधूरे निश्चय से जीव के लिए विभ्रम और विकल्प का कारण होती है. यही सामान्य मुमुक्षु को पता नहीं चलता और अधूरे मुमुक्षु को भी इसका पता नहीं चलता, उसको शंका का कारण होता है. यहाँ विकल्प का शंका लेना, उसको शंका पड़ जाएगी, ये ज्ञानी कैसा, ऐसा ज्ञानी क्यों करता है. तो बाबू जी को प्रश्न उठाया है किसी ने, रामचंद्र जी तो बहुत विशिक्षण पुरुष थे, पुरुषोत्तम पुरुष कहलाए, आज भी उनको पुरुषोत्तम पुरुष मानते हैं, इतने विचक्षण थे बाह्य जीवन में भी. काल तो बहुत हो गया लेकिन ये टाइटल भी रह गया है. 20वें तीर्थंकर के समकालीन थे, मुनि सुवरूपनाथ भगवान के समकाल में रामचंद्र जी का इतिहास बना है. उतने हजारों वर्ष चले गए, तो भी आज उनको अच्छी तरह लोग पहचानते हैं, इसमें पुण्य बनता है। और सीता जी को बिना अपराध त्याग कर दिया है, जिस सीता जी के पीछे वो रोए थे, देखो इनके पूरे भाव की परिस्थिति, जिस सीता जी के वियोग के पीछे इसके आंसू सूखते नहीं थे, ऐसा वर्णन आता है रामायण, उसी सीता जी को बिना अपराध भेज दिया जंगल। जिस सारथी ने सीता जी को जंगल में छोड़ दिया, वो सारथी को इतना वैराग्य हुआ, हमारे जैन रामायण क्या बोलती है, पद्म पुराण करके हमारे आचार्य को लिखा हुआ ये रामचरित्र है, उसमें वो लिखते हैं कि जिस सारथी ने सीता जी को छोड़ा, उसका अंतिम डायलॉग भी दिया है उन्होंने कि क्या क्या चर्चा हुई, वो तो खुद ही रोने लगा कि कैसा संसार है, महात्मा पुरुष भी ऐसा अन्याय कर सकता है किसी को, और वो भी अपनी धर्म पत्नी को, वो भी सम्यक दृष्टि थी, वो भी धर्मात्मा थी, ऐसी फालतू मामूली नहीं थी, उनके प्रति धर्मा, वो भी धर्मात्मा, वो भी धर्मात्मा, और एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा के प्रति इतना अन्याय कर सकता है कि जिसका कोई कसूर नहीं है, तो उसको इतना वैराग होता है। तो रामचंद्र जी को आके समाचार देता है, मैंने इस जंगल में छोड़ी है इसको, बहुत भयानक जंगल है, मेरे को सहन नहीं हुआ है, आपने जो किया, आप महापुरुष हैं, मैं तो आपको कहने के इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन इस संसार से मुझे इतना वैराग आया है कि मुनि बन के जंगल में चला गया, सारथी खुद संसार में नहीं रहा, उसको उतना इफेक्ट हुआ उसको। बाबू जी ने किसने प्रश्न उठाया, क्या धर्मात्मा अन्याय करता है क्या, अनिति करता है ऐसी, ऐसा प्रश्न उठाया, उदय भाव की कभी ऐसी भी स्थिति बनती है, तुम विचलित मत होना, तुम ऐसी पर्यायों की विचित्रता देख करके विचलित, अच्छा था कि वो क्षायक सम्यक दृष्टि थे, वरना हमारे विद्वान लोग तो उसको बता दें कि उसी वक्त वो मिथ्या दृष्टि हो गए थे, बाद में कुछ समय दृष्टि हुए होंगे और मोक्ष जाए गए होंगे, लेकिन वो जन्म से आजन्म क्षायिक समय दृष्टि थी, इसलिए वो कोई संभव नहीं है कोई मिथ्या दृष्टि, लेकिन क्या क्या बनता है। ये कथाएं दर्शन मोह की ताकत दिखाने के लिए, सम्यक ज्ञान की ताकत दिखाने के लिए है, महापुरुषों के दोष दिखाने के लिए वो बात नहीं लिखी आचार्यों ने कि देखो कितना बड़ा दोष किया, अन्याय किया, वो दिखाने की बात नहीं। उसी वक्त भी उन्होंने अपना आत्मधर्म का त्याग नहीं किया था, आत्मदृष्टि का त्याग नहीं किया था, आत्मज्ञान का त्याग नहीं किया था, कितनी ताकत होती है वो दिखाने का, वहां दर्शन का प्रभुत्व क्या होता है, उसका अभाव होता है तो कुछ ताकत होती है, ये बात नहीं है। लौकिक अन्याय कुछ नहीं है, अगर हम इसके अंतर को पहचानते हैं तो लौकिक अन्याय कुछ चीज ही नहीं है, इसके एक तराजू के पल्ले में हम लौकिक अन्याय को रखें और एक तराजू के पल्ले में इसकी मोक्ष के कारणभूत ज्ञान दशा को रखें, तो हमारा तुल कहाँ, कैसे तोलेंगे उसको, उसको तुल देंगे, ये बात हमको समझ में आती है, इसको कोई वजन नहीं, अविकल्प हो जाना, निर्विकल्प हो जाना, विकल्प ही नहीं जाना, ऐसा क्यों,
ये बात
जी
मामूली
दोष है, कुछ नहीं, गिनने लायक नहीं है, वो तो भी कोई गिनने लायक नहीं है, देखने लायक नहीं है, ऐसी बात।
तो एक तो भाई ज्ञानी पुरुष हो एमने ओळख्या पछी ने आ बधी वात छे, अने कोई ज्ञानी न होय पण ज्ञानी जेवी अवस्था लेने बैठो होय, दोष करतो होय, तो पछी एमाय जो भूल करिए तो
एटले आमा तो ओळखवानो सवाल
छे, ओळखवानो सवाल छे,
ओळखवानो सवाल छे,
આજકાલ તો નામધારી પણ
ઘણા શું છે, એટલે જવાબદારી ઘણી છે. મુમુક્ષુથી મુમી કાકી જવાબદારી બહોત હૈ, દોનો અપરાધ એક સરીખે હૈ. ક્યા હો જાયેગા કે અજ્ઞાની કો જ્ઞાની માનને સે જ્ઞાની કો જ્ઞાની નહીં માનેગા. ક્યા ગડબડ હો જાયેગી કે અજ્ઞાની કો જ્ઞાની માન લેને સે ફિર જ્ઞાની કો જ્ઞાની નહીં માનેગા. કે નહીં, મેં તો ઇસ જ્ઞાની કો માનતા, દૂસરે તો કે નહીં વો જ્ઞાની નહીં હો સકતા. ઉનકી દ્રષ્ટિ સંકુચિત હો જાયેગી. એક જ્ઞાની કો માનેગા, દૂસરે કો નહીં. પર ઉનકો પહેચાન નહીં હૈ. તો જો એક હીરા કો પહેચાનેગા, સભી હીરા કો પહેચાનેગા. એક હીરા કો પહેચાની ના, વો ખોટા હીરા કો ભી પહેચાનેગા. બસ બાત ખતમ. પહેચાન ચીજ દૂસરી હોતી હૈ, પર કલ્પના કરના ચીજ દૂસરી હોતી હૈ. પર પહેચાન હોને કે લિયે યોગ્યતા ચાહિયે. યે કોઈ બુદ્ધિ કી પહોંચ કા વિષય નહીં હૈ. એક સૂક્ષ્મ બહોત હૈ, ઇસલિયે સમજ સકતા હૈ, વો બાત હૈ નહીં ઇસમે. યે યોગ્યતા કા વિષય. ઇસી કી તો ચર્ચા કરેંગે ये पत्र में, उसकी तो चर्चा पहचान करना कराने करनी कराने की और उसमें गलतियां होने की तो ये चर्चा उठाई है. पत्र बहुत सुंदर है इस दृष्टिकोण से. जिज्ञासा में रहना, जिज्ञासा में रहना, मध्यस्थता में रहना, डिसीशन में नहीं आना. आइदर साइड ऑफ द डिसीशन शुड नॉट बी टेकन. ज्ञानी है या अज्ञानी है, वो डिसीजन नहीं लेना है. जहाँ तक उसकी पहचान करने की अपनी क्षमता नहीं होवे, योग्यता नहीं होवे, वहाँ तक एक भी साइड का डिसीजन हमको नहीं लेना चाहिए.
तो इतना मतलब शू विशेषण वापस
नहीं,
इतना मतलब कहीं बातचीत करता है तो विशेषण शू वापस
नहीं. वासन वो जिज्ञासा मत हूँ और मारी ओळखवानी शक्ति नहीं आ मारी अयोग्यता से.
बराबर
અપરાધ છે, બચાવે પેલા પેતા પોતાની ઓળખ આવતી નથી. પેલા જ્ઞાની ની ઓળખ આવે, પછી પોતાની ઓળખ આવે. પછી તો પ્રશ્ન જ નથી. અધૂરે નિશ્ચય છે જીવ કે લીધે વિભ્રમ ઓર વિકલ્પ કા કારણ, પરંતુ વાસ્તવિક રૂપ સે તથા પૂરા નિશ્ચય હોને પર વહ વિભ્રમ ઓર વિકલ્પ ઉત્પન્ન હોને યોગ્ય નહીં. ઇસલિયે ઇસ જીવ કો જ્ઞાની પુરુષ કે પ્રતિ અધૂરા નિશ્ચય હૈ, યહી ઇસ જીવ કા દોષ હૈ. દેખો કૃપાલુદેવ કી દોષ કી પરિભાષા ઓર દોષ કી કેટેગરી અલગ હૈ. તો મુમુક્ષુતા નહીં પેદા હોના સબસે બડા દોષ લિયા 254 મેં. તો પાપ કરતા હૈ, ખૂન કરતા હૈ, ઉસ દોષ કો બડા દોષ નહીં લિયા. મુમુક્ષુતા કા પેદા નહીં હોના હી સબસે બડા દોષ હૈ. યહાં કહેતા હૈ કે તું મુમુક્ષુ હૈ, ફિર ભી તેરા અધૂરા નિશ્ચય ઓર અધૂરી દશા હૈ, યહી તેરા દોષ હૈ. કે તું જ્ઞાની કો પહેચાનતા નહીં હૈ યા પહેચાન સકતા નહીં, યહી તેરા બડા દોષ હૈ. મુમુક્ષુતા મેં ક્યા હોતા થોડી ઓર ચર્ચા કરને કે કુછ તો મુમુક્ષુતા કે દૂર હોતે હૈ. વો મુમુક્ષુતા કે લાયક સત્સંગ કરતા હૈ, સમર્પણ કરતા હૈ, યે સબ તો હોતા હી હૈ. ફિર વો અધૂરા નિશ્ચય ભી હોતા હૈ. તો યહાં ઉસકે જો ગુણ હૈ વો નહીં બતાએ. ઉસકા સમર્પણ અચ્છા હૈ, વો સત્સંગ બહોત કરતા હૈ, નિવૃત્તિ લે લિયા હૈ, વો હૈ. उसकी परिपक्वता नहीं आई वो उसका दोष है. अधूरा निश्चय और अधूरी दशा है, वो इसका दोष है. ऐसा बताया. एक साइड को ही बताया, दूसरे साइड को नहीं बताया. जहाँ जो बात की जरूरत है उसको आगे करते हैं. मालूम तो है अधूरा मतलब क्या है, कि अधूरा कुछ दूसरा भी है. इधर अधूरा है तो दूसरी कुछ बातें हैं, लेकिन वो देखने लायक नहीं है, उसकी गिनती नहीं करनी चाहिए। अधूरा निश्चय ये कैंसर जैसा रोग है। गड़बड़ बहुत करता है जी, क्या करता है कि वो अधूरा ज्ञान को पूरा ज्ञान मान लेता है। हम लोग कभी दो इडियम रखते हैं इसमें कि पैसों में तो किसी को पूरापन आता नहीं, कितना भी पैसा आ जाता है तो उसको अधूरा ही दिखता है। कभी ले आओ, कभी चाहिए, अभी उसको कमाओ और कमाओ, तो पैसों में तो किसी को पूरापन आता नहीं और अक्कल में किसी को अधूरापन आता नहीं। कोई अपने को अधूरी अक्कल वाला मानने को तैयार नहीं है। मैं सब समझता हूँ, मैं पूरा समझता हूँ, मैं बहुत समझता हूँ, ये हालत है हम लोग। तो ये दोष बड़ा है, सबसे बड़ा दोष यही है। जब तक हमारी उतनी मध्यस्थता नहीं कि हम किसी भी इश्यू पे राइट जजमेंट निकाल सकें, और हमारे जो मिसकॉन्सेप्ट हैं आगे के वहाँ तक एबोलिश नहीं हुए हैं, गए नहीं, वहाँ तक गड़बड़ होने वाली है। पूर्वग्रह एक तो आदमी को छोड़ने के लिए बहुत कठिन परिस्थिति है, पूर्वग्रह नहीं छोड़ सकता, तो ये सब मिसकॉन्सेप्ट आगे किए हुआ है, उसको छोड़ना पड़ता है। और जहाँ तक मध्यस्थता नहीं आती है वहाँ तक जजमेंट निकालने में बहुत गलतियाँ रहती है। और क्या करता है कि अपने को तो देखता नहीं है और दुनिया भर का जजमेंट निकालता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, मैं तू यह वह, इन चर्चा का विषय। ऐसे ऐसे पत्र बहुत सुंदर है इसमें, जिसकी चर्चा हुए बिना पता ही नहीं चले कि वो क्या कहना चाहते हैं।
जीव का दोष है तो एक्सप्रेशन बहुत माइल्ड एक्सप्रेशन है, बहुत गंभीर रोग है।
बहुत गंभीर दोष, गंभीर दोष ऐसा है कि वो ज्ञानी की विराजना कर रहता है, बहुत बड़ा दोष।
दिखाव में तो आराधना रहती है, दिखाव में तो विनय भाव रहता है,
लेकिन अधूरा अधूरा निश्चय है वो
दोष। भीतर में भावात्मक विराजना बड़े रूप में,
ज्ञानी पुरुष सभी प्रकार से चेष्टा रूप से अज्ञानी पुरुष के समान नहीं होते, सभी प्रकार से नहीं होते, कुछ प्रकार में अंतर भी होता है, फर्क भी पड़ता है, कहीं कहीं ध्यान देवे तो पता चल जाए। ज्ञानी पुरुष सभी प्रकार से चेष्टा रूप से अज्ञानी पुरुष के समान नहीं होते, और यदि हो तो फिर ज्ञानी नहीं है ऐसा निश्चय करना यह यथार्थ कारण है। अगर पूरे का पूरा ऐसा होता तो फिर वो ज्ञानी नहीं है ऐसा निश्चय करना ठीक बात है, लेकिन ऐसा होते ही नहीं है। तथापि ज्ञानी और अज्ञानी पुरुष में किन्हीं ऐसे विलक्षण कारणों के भेद है, क्या ज्ञानी और अज्ञानी पुरुष में कुछ न कुछ ऐसे विलक्षण कारणों के भेद है। ये विलक्षणता कौन सी है ये बात अगर समझ में आ जाए तो ज्ञानी पहचाना जाता है, अगर ये बात जहाँ तक समझ में नहीं आती है तो ज्ञानी पहचाना नहीं जाता। ये बात टू दी पॉइंट ये मुद्दा उठाया है कि जिससे ज्ञानी और अज्ञानी का किसी प्रकार से एक रूप नहीं होता, इसका रूप अलग होता है, वो अलग पड़ता ही है, दूसरों से अलग पड़ता ही है, ऐसा इनका एक रूप है, ऐसी विलक्षणता ज्ञानी में होती ही है, नहीं होगा ऐसा नहीं बनता, अगर नहीं होते तो दोनों एक कहना यथार्थ है, दोनों को एक मानना यथार्थ। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अज्ञानी होने पर भी जो जीव अपने को ज्ञानी स्वरूप मनवाता हो, देखो वो आपका प्रश्न है, वह उस विलक्षणता के द्वारा निश्चय में आता है। इस विलक्षणता को पहचानने वाला जानने वाला हो उसको पता पड़ जाता है कि वह अज्ञानी है और अपने को ज्ञानी मनवाता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष की जो विलक्षणता है उसका निश्चय प्रथम विचारणीय है कि ये विलक्षणता कैसी है, इसका निश्चय विचारणीय योग्य है ऐसा, इसका इसका विचार करके इसका बराबर यथार्थ निश्चय होना चाहिए। और यदि वैसे विलक्षण कारण का स्वरूप जानकर ज्ञानी का निश्चय होता है तो फिर अज्ञानी जैसी क्वचित जो जो चेष्टा ज्ञानी पुरुष के देखने में, ज्ञानी पुरुष की देखने में आती है उसके विषय में निर्विकल्पता प्राप्त होती है। अगर ये विलक्षणता का माँ कभी अपने बेटे को गुस्सा में आकर के इतनी बड़ी आंखें कर करके मार देती है तो बच्चा को शंका होती है कि कोई दूसरी बंदाई थी, मेरी माँ होगी कि नहीं होगी, उसको ये पता है कि मेरे पर राग ज्यादा है ना, इसलिए हो गया इससे। क्या अधिक राग होने से द्वेष का जन्म भी राग की मात्रा तीव्र हो जाने का कारण हो जाता है। इसलिए वो निर्विकल्प ही होता है अर्थात विकल्प नहीं होता। निर्विकल्प होता मतलब क्या, तो उसको विकल्प या शंका प्रत्युत माने उल्टा। ज्ञानी पुरुष की वह चेष्टा, हाँ क्या लिखा देखो, ज्ञानी पुरुष की वह चेष्टा उसके लिए विशेष भक्ति, विशेष बहुमान और विशेष स्नेह मैंने प्रेम का कारण हो जाती है। ऐसी दशा में भी वो अपना श्रद्धा ज्ञान को निभाता है, टिकाता है, बलवान रहता है। इतनी दशा हो गई, शरीर की ऐसी अवस्था हो गई, बीमारी की ऐसी अवस्था हो गई या ऐसा उदय आ गया, अरे ऐसा परिणाम विभाव के हो गए, बाहर में दशाई हुई नहीं, इनके भी चारित्र मोह के परिणाम इतने हो गए, फिर भी उन्होंने अपने आत्मा की पकड़ में रहे, श्रद्धा ज्ञान में छोड़ा नहीं, परमात्मा को बिना छोड़ करके ऐसा हुआ, तो अद्भुत और अलौकिक दशा है। उनको ज्ञान के प्रति भक्ति, प्रेम, बहुमान सब बढ़ जाता है। पहचानने में पहचान वाले को ये अधिक दृढ़ता का निमित्त होता है और अधूरा निश्चय वाले को अज्ञानी मानने का निमित्त हो जाता है। ज्ञानी नहीं हो सकते, ज्ञानी होता तो ऐसा बनता है, उसको अज्ञानी मानने का। चीज तो एक ही है, योग्यता के साथ इसका निर्णय, इसका परिणाम ऐसा बलवान हो जाता है, इसका और खराब हो जाता है, चीज तो एक ही है। प्रत्येक जीव अर्थात ज्ञानी अज्ञानी यदि सभी अवस्थाओं में शरीर के ही हो तो फिर ज्ञानी और अज्ञानी यह नाम मात्र होता है। आगे की बात दोहराई, तो एक सामान्य यथार्थ है, ये तो नाम हो गया, ऐसे नाम कैसा भी हम रख सकते हैं, नाम तो कैसा भी रख सकते हैं। चतुर भाई होवे मूर्ख, नाम हो गए चतुर भाई, और होवे मूर्ख तो नाम हो गया, गुण नहीं है, नाम को बराबर गुण नहीं है, परंतु वैसा होना योग्य नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ज्ञानी अज्ञानी सरीखे, सभी अवस्था में सरीखे नहीं होता। ये तो हम ले लेते हैं अशुभ के उदय। अब शुभ का उदय का दृष्टांत है, भगवान के जिन मंदिर में समय भक्ति होती है, समय पूजा होती है, ज्ञानी भी भक्ति पूजा करता है, अज्ञानी भी भक्ति पूजा करता है, और दोनों सरीखा करता है। क्या अंतर दिखे इसका? कोई अंतर नहीं दिखे। कभी ऐसा होगा कि अज्ञानी की भक्ति पूजा अच्छी दिखे, कि आधा घंटा करे, ये डेढ़ घंटा करे, ये जिस राग से जिस भावावेश में आता है ज्ञानी, इसके ज्यादा अज्ञानी का भावावेश ज्यादा दिखे, भक्ति का भावावेश, भक्ति भाव का आवेश ज्यादा दिखे, फिर भी ज्ञानी ज्ञानी है, अज्ञानी अज्ञानी है, अज्ञानी ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी अज्ञानी नहीं है। तो ऐसे बाह्य दृष्टि में ज्ञानी को पहचानना बहुत कठिन है, इसके लिए तो अंतर्दृष्टि ही चाहिए। सभी अवस्थाओं में सरीखे ही हो तो फिर ज्ञानी और अज्ञानी यह नाम मात्र होता है, परंतु वैसा होना योग्य नहीं है, ऐसा बनता नहीं। ज्ञानी पुरुष और अज्ञानी पुरुष में अवश्य विलक्षणता होना योग्य है, विलक्षणता होती ही है, नहीं होती है ऐसा। जो विलक्षणता यथार्थ निश्चय होने पर जीव को समझने में आती है, ज्ञानी को पहचानता है, यथार्थ निश्चय होता है तो उस विलक्षणता से वो पहचानता है और उसको समझ में आ जाती है। जिसका कुछ स्वरूप, इस विलक्षणता का कुछ स्वरूप यहाँ बता देना योग्य है। देखो जैसे क्या यहाँ तक आया है, यहाँ तक विषय आया है, तो इस विलक्षणता को मैं इस पत्र में बता देना चाहता हूँ। मुमुक्षु जीव को ज्ञानी पुरुष और अज्ञानी पुरुष की विलक्षणता, उनकी अर्थात तो ज्ञानी और अज्ञानी पुरुष की दशा द्वारा समझ में आती है। क्या क्या बात कर दिया? एक संयोग बात कर दिया, ज्ञानी अज्ञानी के दोनों का संयोग कैसा भी हो सकता है, पूर्व का उदय अनुसार। पूर्व को भी कहते थे कि ज्ञानी ऐसा भी हो सकता है, काला हो, कुबड़ा हो, काणा हो, मैंने आंख के हो, एक दिन हो, निर्धन हो और रोगी हो, और पुण्य का इतना कमी हो कि सब सारी समाज उसको हड़ हड़ करके निकालता हो, निकल जावे इधर से, तुम इधर क्यों आया, निकल जावे इधर से,
चांडाल हो, चांडाल हो,
चांडाल भी जाति के भी ऐसा हो सकता है। ये पहचानने का कोई लक्षण, और अज्ञानी हो, सुंदर हो, सभी तरह से प्रभावित, बाहर पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं, व्यक्तित्व का धनी हो, कुछ भी, विद्वान हो, बुद्धिमान हो, चतुर हो, ऑरेटर हो, लेखक हो, कुछ भी हो, ये सब संयोग की बात है। दशा द्वारा पहचाना जाता है, दशा में सब बात 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 बाकी हो जाती है, कुछ नहीं आता, कोई संयोग नहीं आता, कोई शरीर भी नहीं आता, और इसकी कोई कलाएं भी नहीं आती, लौकिक कलाएं में सब जाता है, वक्तृत्व भी लौकिक कला है, लेखन करना भी लौकिक कला है, वो अलौकिकता में वो बात नहीं आती, वो दशा में नहीं है, दशा से बाह्य है, दशा दूसरी चीज है, कला दूसरी चीज है, दशा दूसरी चीज है, शरीर दूसरी चीज है, दशा एक चीज है, संयोग अलग दूसरी चीज है, कोई संबंध नहीं। अभी हमें हमारे शिविर में ये प्रश्न बहुत आता है, आगरा में भी आया, सोनागिर में भी लास्ट टाइम आया। ज्ञानी के पहचानने का बाह्य लक्षण बताइए क्या? ज्ञानी को पहचानने का चर्चा के एक घंटा रख लेते ना अपन, उसमें प्रश्न को तो पटांग कैसा भी करने का छूट होता है, पर प्रश्न करने में कोई किसी को बंधन नहीं होता। बंधन इतना तो रखता है कि फालतू के प्रश्न जो अप्रयोजन हो जाए, इसकी चर्चा करके हम हमारे समय को खराब नहीं करेंगे, इसलिए कि 60 मिनट से ज़्यादा तो हम चलाएंगे नहीं। हम मेरे पास समय की पाबंदी है, तो कोई ठीक बात है उसकी चर्चा करनी है, अप्रयोजन के प्रश्न की चर्चा में हमको उलझना नहीं है। बताते हैं ज्ञानी के पहचानने के समय दृष्टि को पहचानने का बाह्य लक्षण कौन सा होता है, तो जवाब देना पड़े, एक भी नहीं होता है क्या? यही बात क्या ने यही बात किया कि इसने अस्थि से किया, नास्ति से बाजाती है कि उनकी दशा के द्वारा वो पहचाना जाता है। विलक्षणता कहाँ से पहचानने में आती है? विलक्षणता कहाँ रहती है? कि उनकी दशा में रहती है। मुमुक्षु जीव को ज्ञानी पुरुष अज्ञानी पुरुष की विलक्षणता उनकी अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी पुरुष की दशा द्वारा समझ में आती है। ज्ञानी है ऐसा भी उसकी दशा से पहचानता है, ज्ञानी है वो भी इसकी दशा से पहचाना जाता है। से किसी का भी निर्धार करने की कोई आवश्यकता नहीं।
ये जो द्रविड़िंग बनता है, द्रविड़िंग बनता है मुनि, द्रविड़िंग मुनि, उसके जो बाह्य दशा है तो एक दशा ही माना जाता है।
उसमें क्या है कि पंचम गुण स्थान से बाह्य निर्धार होता है, चतुर्थ गुण स्थान में पूर्व कर्म जैसे कि झोंका क्यों रह जाता है और भीतर में आत्मा पूरा पलट जाता है। आत्मा ने बड़ी पलटी मार दी, पूरा संसार से मुंह फेर लिया, मोक्ष के प्रति वो गमन करने लगा, वहाँ कोई छुटकार नहीं था। फिर वितरागता बढ़ने से कुछ कर्म में और उदय में भी छुटकार, नौकर्म में भी हो जाता है। तो मुनि दशा के लिए जो शास्त्र आमनाई है वो ऐसी है कि कोई द्रविलिंगी दिखे तो, द्रविलिंग मैंने क्या 28 गुणों का पूरा पालन, निरतिचा पालन करने वाला। आजकल जो है वो टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन समझने के दौरान ये बात चलती है कि कोई द्रविलिंग भी नहीं है हिंदुस्तान में, दिगंबर मुनि सितंबर की से चर्चा करने का सवाल भी नहीं पैदा होता, क्योंकि वहाँ तो गुणस्थान आता ही नहीं छठा सात। लेकिन निर्वस्त्र अवस्था में गुणस्थान हो सकता है, वो भी किसको? 28 मूल गुण जिसका शुद्ध चोखा हो उसको, एक भी मूल गुण टूटा हो तो वहां द्रविलिंग भी नहीं है, भावलिंग की कितने का तो विचार करने का अवकाश भी नहीं रखना चाहिए। तो आजकल जो है वो लिंगाभास है, द्रविलिंग कोई नहीं है, लिंगाभासी सब मग्न हो जाते हैं, कुछ मूल गुण पालते हैं, कुछ मूल गुण भी नहीं पालते हैं, तो द्रविलिंग मान नहीं पाता। लेकिन जिसका द्रविलिंग शुद्ध हो 28 मूलगुण वाला, उसको प्रगहन करके आहार दान नवधा भक्ति से दिया जाता है तो दोष नहीं है।
ऐसे समय में यदि मुमुक्षु को यह भान पड़ता है कि अंतरदशा योग्य नहीं है, अंतरदशा जैसी होनी चाहिए ज्ञानी की, वो बाह्य आचरण निरतिचार पालन होने के बाद भी
ऐसा लिया है कि जैसे मुनि आ रहे हैं तो दूर से कौन मुनि है कैसे जान पहचान तो नहीं है, वो तो जंगल में ही रहते हैं, बस्ती में रहते तो जानते हैं कि वो फलाने फलाने हैं, लेकिन वो तो रहते नहीं जंगल में, जंगल में रहते बस्ती में रहते हैं। अब कोई आ रहे हैं और दोपहर का खाने का जीने का समय, तो वो जब वो बस्ती में आते हैं दिन को आते हैं तब खाना खाने के टाइम तो आहार के कारण आते हैं, तो समझ लिया कि कोई निराज है वो आहार लेने के लिए बना रहे हैं। तो कोई दूसरी साइड में जाने के बजाय सबसे पहले हमको आह्वान के लिए आवाहन करना है, प्रदान करना है, ये श्रावक का मोक्ष का धर्म है, नवदा भक्ति से उसको आह्वान करना है।
ऐसे समय भाई मुनिराज जब घर आते हैं, एक मिनट दो मिनट का समागम आए हैं, अब ये 28 मुनिमन का पालन इनका यथार्थ है कि नहीं है, ये कैसे
नहीं, वो भी परीक्षा करने वाले को तो कुछ न कुछ बात दी जाती है, जैसे कि रिया समिति से चलते हैं, आप देखिए रिया समिति से चलने वाले दिल्ली में सारा हाथ ऐसे देख के चलने वाले, उसकी शांतता गंभीरता छिपी हुई है, जैसे जिनेंद्र देव की मूर्ति में शांतता है, ऐसी शांतता दिखती है, जंगली प्राणी बाघ चित्ता जैसे भी थम जाते हैं, मनुष्य को समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं
है, ऐसा
शांत मतलब द्रविलिंग में भी ऐसा द्रविलिंग काला नहीं जाता है, द्रविलिंग में भी कैसा बहुत मन होती है, तो शुद्ध द्रविलिंग पालन करते हैं उनकी कषाय बहुत मन और वास्तव में आज जंगल में रहने वाले कितने बताइए, पहले तो ये बताइए, अगर बस्ती में रहना है तो अपने घर में रहने में क्या आपत्ति है, घर छोड़ा क्या, वो तो घर में नहीं रह सकता है तब घर छोड़ता है, कोई तो दमन से नहीं छोड़ता या मात्र सुभाव से नहीं छोड़ता, वो रह सकता ही नहीं, इतना बोझा उनका सहन नहीं होता, तब वो छोड़ता, फिर बस्ती में रहने का क्या कारण है बताइए, और क्या इनकी बाह्य दशा बस्ती में रहने लायक है क्या, है भी नहीं, दोनों बातें, उनको भी पोसाएगा नहीं, बस्ती वाले को भी पोसाएगा, दोनों बातें है, इसलिए मुझे कभी सच्चा द्रविलिंगी हो तो भी बस्ती में रहने वाला नहीं, जंगल में ही रहेगा, तभी वो केवल ज्ञान लेने को निकला है, मुनि होने के लिए मुनि नहीं बना है, वो तो जिनेंद्र परमात्मा केवल ज्ञान बनने की तैयारी के लिए निकला है, रात दिन उसका प्रसाद चलता है, तो वो तो जाति अलग होती है, कोई द्रविलिंग हो तो वहां तक दोष माना नहीं जाता है, जब दोष नहीं मानते तो फिर उसका परिचय करने के पहले उसकी परीक्षा करनी पड़ती है, सत्संग करे उसके पहले, बोध उसका सुने उसके पहले, आज तो हम लोग किसी का भी बोध सुनने को बैठ जाते वो बात नहीं चलती, मुनि का दो बोध सुनने के लिए श्रावक परीक्षा करता है, ये भावलिंगी है तो मुझे बोध सुनना है, अगर भावलिंगी नहीं है तो मुझे आरदान दे दिया, जय जिनेन्द्र कर लिया, वो अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, उसका सत्संग नहीं करेगा और सम्यक दृष्टि तो अवश्य नहीं करेगा, मिथ्या दृष्टि की बात अलग है, उसको पहचान होना भी अलग है, सम्यक दृष्टि तो नहीं करता, ऐसी बात है, ठीक है, वो चर्चा का आज प्रसंग भी नहीं है, आज वो चर्चा चल रही है वो तो बिना मतलब चल रही है, क्योंकि परिस्थिति नहीं है, कोई जंगल में रहते नहीं, कोई अनुद्देशिक आहार लेते नहीं, सबके छोके लगते हैं, खुली खुली तो बात है, वो भी जानते हैं, देने वाले जानते हैं, लेने वाले जानते हैं, सब बात है, सवाल ही पैदा नहीं, मुमुक्षु जीव उसकी दशा द्वारा समझ में आती है, उस दशा की विलक्षणता जिस प्रकार से होती है वह बताने योग्य है, देखो इस विलक्षणता को बताने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और पेट बदल गया है जो संकलन का उसको मिला नहीं, लेकिन यहाँ तक बात आ चुकी है,
यहाँ लगा बात आई जागे मुझे, अभी
एक वचन आया है, एक वचन है और
बाकी वचन आप पूरा करो
चर्चा तो करेंगे थोड़ी बहुत, जितनी अपनी योग्यता है उतनी चर्चा करेंगे, તો પ્રયોજન વિશે, વિષય તો પ્રયોજન, એક તો મૂળ દશા, મૂળ દશા મેને અંતરદશા, અંતરદશા મેને પરિણતિ વાલી દશા, જ્ઞાન દશા કહો, જ્ઞાન ધારા કહો, મૂળ દશા કહો, અંતર પરિણતિ કહો, સ્વરૂપાકાર દશા કહો, કે જ્ઞાની કી મૂળ જ્ઞાન દશા હૈ, ઓર દૂસરી ઉત્તર દશા, ઉત્તર દશા મેને બાહ્ય વિકલ્પ, બાહ્ય ઉપયોગ, બાહ્ય જ્ઞાન, એ સબ ઉત્તર દશા મેં જાતા હૈ. એસે દો ભાગ જીવ કી દશા કે હો સકતે હૈ. ક્યા? હર જીવ કી દશા મેં દો ભાગ હોતે હૈ, એક અંદર કી દશા, એક બહાર કી દશા, એક પરિણતિ વાલી દશા, એક બાહ્ય પ્રવૃત્તિ મેં જો પરિણામ લગતે હૈ જીવ કે, ઓ ઉસકી જીવ કી બાહ્ય દશા હૈ, જિસ પરિણામ કે નિમિત્ત સે બાહ્ય પ્રવૃત્તિ હોતી હૈ, તો બાહ્ય દશા હૈ, ઉસમેં જ્ઞાન ભી હોતા હૈ, ઉપયોગ ચારિત્ર મેં રાગ હોતા હૈ, જો ચારિત્ર મોહ કા હૈ, ઉસમેં પુરુષાર્થ કા ભી એક અંશ લગતા હૈ, ઓર ઉસમેં દુઃખ ભાવ ભી હૈ, એસે મુખ્ય મુખ્ય ગુણો મેં ચાર ગુણ હૈ. જો શ્રદ્ધા હૈ વો બાહ્ય કભી નહીં હોતી, સમ્યક દ્રષ્ટિ કી શ્રદ્ધા જો હૈ વો પૂરી કી પૂરી એક બાજુ હોતી હૈ, ઉસકા ઉસકી દો દશા નહીં હોતી. શ્રદ્ધા અખંડ રહેતી હૈ હમેશા, ઉલટી હો તો ભી અખંડ ઉલટી હૈ, સુલટી હો તો ભી અખંડ સુલટી હોતી હૈ, ઇસલિયે શ્રદ્ધા કા કોઈ ચિહ્ન બાહ્ય મેં નહીં આતા હૈ. બાહ્ય દશા મેં શ્રદ્ધા કા પરિણમન કા કોઈ અંશ હોતા હી નહીં. જ્ઞાન કા હોતા હૈ, ચારિત્ર મેં રાગ દ્વેષ મોહ હોતા હૈ, પરિણામ મેં દુઃખ રૂપ ભાવ હૈ, સુખતા હૈ, સુખ હૈ, પ્રસન્નતા હૈ, વો ભી દુઃખ ભાવ, દુઃખ ભાવી હૈ, ઓર પુરુષાર્થ કા ભી એક અંશ કા ખર્ચ હોતા હૈ બહાર મેં. યે ચારે ગુણ બઢ જાતે હૈ. જ્ઞાન કી એક લબ્ધ પરિણતિ અંતર મેં હોતી હૈ, ઉપયોગ કો બહાર કહેંગે, લબ્ધ કો અંતર પરિણતિ મેં. ઓર વિતરાગતા કા એક અંશ ચારિત્ર કા હૈ, ઓર એક સ્વરૂપ સુખ શાંતિ કા એક અંશ હૈ, વો ભી ભીતર કા હૈ, ઓર પુરુષાર્થ ભી ઇસકે સાથ, બહુભાગ પુરુષાર્થ, પુરુષાર્થ કા બડા ભાગ જો હૈ વો ઇસકે સાથ જુડા હુઆ હૈ, અંતર પરિણતિ કે સાથ લગા હુઆ હૈ. ઇસલિયે બહાર કા જો પુરુષાર્થ હૈ વો કમજોર હોને સે ઉસકે અસર પરિણતિ પર નહીં આ સકતે, પરિણતિ બદલ નહીં સકતે, જ્ઞાન ઉતના ફેરફાર ઉસ ચાર ગુણ મેં ગુણ ભેદ સે અગર સમજના ચાહે તો ये ચાર પ્રકાર કા હોતા હૈ. તો કહેતે હૈં કે એસે દો ભાગ જીવ કી દશા કે હો સકતે હૈ, જીવ કી દશા કે એસે દો ભાગ હો સકતે હૈ. તો બહાર કી દશા હૈ ઉસમે ભી જો વિભાવ હૈ ઉસમે વિભાવ રસ કમજોર હૈ, શ્રદ્ધા કા અભાવ હોને સે, જબ શ્રદ્ધા કા અભાવ હો ગયા તો જો ભી બાહ્ય કાર્ય કે રૂપ પરિણામ હૈ, બાહ્ય કાર્ય મેં જો પરિણામ જાતે હૈ ઉસમે ઉનકી શ્રદ્ધા હી નહીં હોને સે ઉસમે રસ નહીં રહેતા, નિરસતા હો જાતી. એક બાત, દૂસરા એક બહુ સૂક્ષ્મ બાત હૈ, વો હૈ કે અજ્ઞાની અપના અસ્તિત્વ વિભાવ મેં અનુભવ કરતા હૈ, યાને અપને અસ્તિત્વ ઉસને જમા રખા હૈ વિભાવ મેં, જબકે જ્ઞાની કા જો વિભાવ અંશ મેં હૈ ઉસમે સે અપના અસ્તિત્વ ઉસને ઉઠા લિયા હૈ. તો યે ભી એક પરિણમન કા જો પ્રકાર હૈ, જિસમે અપના અસ્તિત્વ નહીં દિખતા હૈ, અનુભવ મેં નહીં આતા હૈ, એસે વિભાવો ચલતે હૈ, જિસમે અપના અસ્તિત્વ કો ઉઠા લિયા હૈ. जैसे हमने एक मकान बेच दिया, एक गाड़ी बेच दी, तो देखते ही हम कहेंगे नंबर प्लेट देखेंगे ये हमारी गाड़ी है, क्या कहेंगे ये हमारी वाली गाड़ी है, जो इधर से गई वो हमारी वाली गाड़ी है, या मकान जो है वो हमारा वाला है, कहेंगे भाषा में भाव में क्या आएगा कि हमने तो डॉक्यूमेंट साइन कर दिया है और पेमेंट ले लिया है, हम तो हमारा कोई स्वामित्व तो उसके पर है ही नहीं, हम उसके मालिक नहीं है, बोलेंगे फिर भी भाव में स्वामित्व नहीं आएगा। तो ज्ञानी की दशा में जो विलक्षणता है, बाह्य दशा में जो विलक्षणता है, अंतर दशा में तो बहुत अलौकिक विलक्षणता है, ये तो जाति अलग है उसके, तो सब प्रकार से उसकी भात जात सब अलग है, भात मैंने डिजाइन कुदरती में भात कहते हैं, लेकिन उसको कहते हैं डिजाइन, उसकी भात जात सब अलग होती है अंतर परिणति की, लेकिन बाह्य विभावंश जो है उसमें भी स्वामित्व का अभाव होता है, अस्तित्व का अभाव होता है, रस का भी अभाव होता है, ऐसे ऐसे इनके भी पहलू है, एकत्व का अभाव होता है, एकत्व नहीं होता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों का अभाव होता है, ऐसे हमने वो दिया है इधर आत्म जागृति के शुरू के अंश अंत में कि मिथ्यात्व के कितने कितने सूचक परिणाम है, ये सभी प्रकार का अभाव होता है इसके बारे में करीब 25-26 दिए हैं, सब प्रकार के अभाव होते हैं। दवाई लेता है देहात्म बुद्धि का अभाव होता है, खाना खाता है देहात्म बुद्धि का अभाव होता है, स्नान करता है देहात्म बुद्धि का अभाव होता है, देहात्म बुद्धि की ये बाह्य परिणामों में भी विलक्षणता आती ही है, होती ही है, इस विलक्षणता को जो पहचानता है योग्यता के कारण से, बिना योग्यता ऐसे पहचानने की क्षमता नहीं आती है, उनके लिए तो द्रविभ्रम होने का सवाल है, ऐसी परिस्थिति में तो मध्यस्थ रहना जिज्ञासा में रहना यही हितकारक है। तो नहीं चलता है और आत्मार्थता भी नहीं आई है, ये इसका कारण, और किससे भी आगे जाना पड़ता है, ये बदले आत्मार्थता आए तो जगने मुमुक्षुता में प्रवेश होता है, फिर इसी मुमुक्षुता का विकास थोड़ा होता है तो मध्यम कोटि की मुमुक्षुता भी आती है, वहां तक पहचान नहीं होने की संभावना, क्या जघन्य मुमुक्ष सही मुमुक्ष और मध्यम कोटि के मुमुक्षों को पहचान नहीं होगी, ऐसी संभावना, उच्च कोटि के उत्तम कोटि के जो मुमुक्ष है उसको प्राय ज्ञानी को अज्ञानी की पहचान में प्राप्ति नहीं होती, ऐसी बात तो यहाँ तक समझना, और अपनी योग्यता को उत्तम कोटि की मुमुक्षुता में आए तब ही पहचानने की क्षमता है, ऐसा एक निश्चय या विचार अभिप्राय रखना योग्य है, इसके पहले इसी को भी मानने की उतावल भी करने की जरूरत नहीं है और इसका निषेध करने की उतावल भी करने की जरूरत तो बच जाएंगे, भरना गड़बड़ हो जाएगी मानने में या नहीं मानने में, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी, तो इसकी जवाबदारी जिम्मेवारी खुद की स्वयं की रहती है, तो उसका नुकसान भी स्वयं को ही आता है, दूसरे को नहीं आता है। तो इतना इतना विचार है इस विषय में, जो भी है सो उस टाइप का विचार है, 15 मिनट है, 7 प्रश्न के लिए। ये पत्र है ज्ञानी के लिए, ज्ञानी की पहचान का विषय है, अधूरा रह गया है, वो आगे जाके बताना चाहते हैं। और खास करके इस विषय में किसी को और जिज्ञासा से इसका अभ्यास करना है, अध्ययन करना है, चिंतन करना है, तो समय सारथी निर्जरा अधिकार का राजमल जी कृतिका, पंडित राजमल जी ज्ञानी है और अच्छे ज्ञानी है, उन्होंने समय सार कलश पट्टिकाएँ लिखी, टीका लिखी है, समय सार कलश टीका, उसका निर्जरा अधिकार। अपने शब्द में बहुत मार्मिक बातें खोजी, सम्यक दृष्टि को निर्जरा होती है। और कुमकुंड आचार्य ने बहुत क्रांतिकारी गाथाएं लिखी, क्या लिखा है, क्रांतिकारी गाथाएं लिखी, इसीलिए लोग भड़कते हैं कि समय सार जल्दी नहीं पढ़ना है, समय सार मुनि के पढ़ने के योग्य है, गृहस्थी को पढ़ने के योग्य नहीं, क्यों होता है। तो कुछ गाथाएं बहुत क्रांतिकारी, जैसे प्रारंभ में उन्होंने लिखा अधिकारी यहाँ से सुन, ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु होते हैं, अधिकार निर्जरा का चला है तो यहाँ से उठाया है। तो ज्ञानी के भोग हो या अज्ञानी के भोग, भोग के परिणाम पाप के ही होते हैं, नव तत्व में वो पाप चित्र है, और यहाँ निर्जरा के साथ इसका अनुसंधान किया है, तो माथा पर कोई हथौड़ा मारे ना चक्कर आ जाए, तंबर लग आ जाए, ऐसी ऐसी बातें आचार्यों ने लिखी है, कुंदकुंद आचार्य है, ऑथेंटिक बातें हैं, आधारभूत आज भी हम मान सकते हैं कि इनके वचन आधार, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने लिखी है। और अमृत चंद्राचार्य के खरस 150 नंबर का उसी अधिकार में, हे ज्ञानी अगर तुझे पूर्व कर्म के उदय से भोग है तो तुम उसको भोग क्यों नहीं भोगता है, ये तेरा अपराध नहीं है क्या, ये तेरा अपराध नहीं है, ऐसा लिखा है। अभी कोई सदृष्टिवान नहीं हो, असदृष्टिवान हो तो मर जाए वो, तो अच्छा हुआ ये, तो एक तो अपने को अच्छा लगता है और वैद्य जो चीज खाने में अच्छी लगती है और वैद्य बताता है कि तुमको ये खाना है, तुम्हारी दवाई है, तो फिर दवाई के रूप में नहीं खाएगा आप, तो वो तो उतना खाएगा कि इससे उसकी तबीयत बिगड़ेगी ये बात हो जाएगी, क्यों कि जो अच्छा लगता तो वैद्यराज ने बताया, फिर क्यों कसर रखा। ऐसी ऐसी क्रांतिकारी बातें निर्जरा अधिकार में आचार्यों ने लिखे, अमृत चंद्राचार्य भी उतने ऑथेंटिक है, मर जाए सामान्य प्राणी तो पढ़ते ही मर जाए होता, भोग उपभोग में फंस जाए होता, लेकिन निर्जरा तत्व समझना है या ज्ञानी का स्वरूप समझना है तो ये बात भी तुमको समझनी पड़ेगी, जब ज्ञानी की पहचान आएगी थोड़ा परीक्षा का काल आ जाता है, ऐसी बातों पढ़ने में अध्ययन करने में ये परीक्षा काल होता है, ये बात को पचाना समझना बहुत कठिन होता है, उल्टा पड़ जाता है कोई भी। ये शुभाशुभ परिणाम से कोई पार दशा है और उसी दशा से निर्जरा होती है, ये कहने का ना अभिप्राय है, तुमको पहचानने तो तुम कैसे पहचानोगे, समय दृष्टि को भोग उपभोग होता है। शांतिनाथ, कुंथुनाथ, हरनाथ तीन तो चक्रवर्ती थे हमारे 24 तिथि का, इसका वैभव तो प्रसिद्ध है अपने आगे में, चाहिए समय दृष्टि थे, सूक्ष्म सम्यक दृष्टि नहीं थे, कायिक सम्यक दृष्टि थे, पहचानने के लिए सभी प्रकार की बातें उनकी सूक्ति बहुत आती है, इसमें विलक्षणता क्या है ज्ञानी की दशा में और अलग ज्ञानी की दशा में विलक्षणता क्या है, ये बात समझने के लिए ये सब बात है। ये जो पुराण है वो भी उसी विलक्षणता को दिखाने के लिए, विलक्षणता नहीं समझे, और ये समय सार का निर्जराधिकार भी उसी विलक्षणता को दिखाने के लिए, तो वो बात को नहीं समझे, ये तो गड़बड़ हो ही जाएगी।
અહીં તો પારમાર્થિક સરળતામાં આવ્યા છે, એને કારણે અંતરમાં જેટલી શુદ્ધ દશા હોય છે એની ઝલક બાહ્ય દશામાં પણ જોવા મળે છે।
એક સરખી નથી હોતી, કોઈ ફેર તો હોય જ છે, પણ એની જે વિલક્ષણતા છે એ ફેર છે, એક જાતની વિલક્ષણતા છે, એ વિલક્ષણતા કેવી હોય એ સમજાય તો જ્ઞાની ઓળખાય, એ ન સમજાય તો જ્ઞાની ઓળખાય, એની કેટેગરી કઈ એવી, જગન્ય મોમોક્ષુ નહીં ઓળખી શકે, મધ્યમ મોમોક્ષુ નહીં ઓળખી શકે, ઉત્તમ એ પેલા કોઈ ગડબડ કરવા જાય તો સમજવું કે આ બધી ખોટી ગડબડ ચાલે છે, બરાબર સાચી એ વાત છે, એ વાત લીધી છે અમને 679 ત્યાં વાણીની વાત લીધી છે, જ્ઞાનીની ને અજ્ઞાનીની વાણી એક સરખી હોઈ શકે છે, પણ એને કોણ ઓળખશે, જો દૂસરા દૂસરા નંબર કા પેરેગ્રાફ હૈ 503 પન્ને કા, સર્વ જીવો કો અર્થાત સામાન્ય મનુષ્યો કો જ્ઞાની અજ્ઞાની કી વાણી મેં જો અંતર હૈ તો સમજના કઠિન હૈ, યહ બાત યથાર્થ હૈ, ક્યોંકિ શુષ્ક જ્ઞાની ભી કુછ સીખ કર સીખ લેને સે, જ્ઞાની જૈસા ઉપદેશ કરે જીસસ હૈ ઉસમે વચન કી સમાનતા દિખને સે, શુષ્ક જ્ઞાની કો ભી સામાન્ય મનુષ્ય જ્ઞાની માને, મંદ દશાવાન મુમુક્ષુ જીવ ભી, અભી લિખા ક્યા મંદ દશાવાન મને જગન્ય મુમુક્ષુ જીવ ભી, વૈસે વચનો સે ભ્રાંતિ મેં પડ જાતા હૈ, પરંતુ ઉત્કૃષ્ટ દશાવાન મુમુક્ષુ પુરુષ શુષ્ક જ્ઞાની કી વાણી શબ્દ સે જ્ઞાની કી વાણી જૈસી દેખ કર પ્રાય ભ્રાંતિ પાને યોગ્ય હૈ। યહાં બોલ લિયા હૈ, આગે જા કરકે તીનો કી બાત કી, મધ્યમ દશાવાન કો ભી નહીં સમજ મેં આયેગા, વો બાત આગે જા કરકે। तीसरा पैराग्राफ है, जिसको अज्ञान के प्रति मोह समाप्त हो गया हो, क्या जिसे अज्ञान और ज्ञान का भेद समझ में आया हो उसे अज्ञानी और ज्ञानी का भेद सहज समझ में आ सकता है, जिसका अज्ञान के प्रति मोह समाप्त हो गया है ऐसे ज्ञानी पुरुष को शुष्क ज्ञानी के वचन कैसे भ्रांति कर सकते हैं। तो ज्ञानी तो भ्रांति में पड़ते नहीं है, ज्ञानी तो ज्ञानी को कहता है एक बार, किंतु सामान्य जीवों को अथवा मंद दशा अथवा मध्यम दशा के मुमुक्षु को शुष्क ज्ञानी के वचन समान रूप दिखाई देने से, एक सरीख है समान रूप दिखाई देने से दोनों ज्ञानी के वचन है ऐसे भ्रांति होना संभव है। उत्कृष्ट मुमुक्षु को प्राय वैसे भ्रांति होना संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञानी के वचनों की परीक्षा का बल उसे उत्तम कक्षा के मुमुक्षु को विशेष रूप से स्थिर हो गया है, परिपक्वता आ गई है उसको, मैच्योर्ड है, उत्तम दशा वाला मुमुक्षु की मैच्योरिटी उतनी है, स्थिर हो गया है, ऐसा लिखा है, ऐसा पहचानने की उनके विचार दशा जो है वो विशेष रूप से स्थिर हो गया है, विशेष रूप मैंने मैच्योरिटी आ गई है इसमें से, तो उसको भ्रांति नहीं। ये चर्चा 600 की है वाणी के माध्यम से, वाणी एक सरखी होती है इसमें भ्रांति हो जाती है, कई लोगों का त्याग होता है, कईयों की वाणी अच्छी होती है, कईयों का त्याग अच्छा होता है, तो भ्रम में पड़ जाती है।
શુષ્ક જ્ઞાની પ્રતિપાદન ને સંતુલન નહીં રખ પાતે, સંતુલન ગવા દે.
इसका कारण ये कि इनकी दशा में संतुलन नहीं है. उनको जब आत्म संतुलन नहीं है तो इसकी वाणी में बैलेंस कैसे रहेगा? आपको बैलेंस हो ये संतुलन का विषय बहुत सूक्ष्म है, इसलिए थोड़ा
सामान्य एकांत होता है वहाँ अज्ञानी को वहाँ विभोरता नजर आती है. जो बात प्रभावित करती है वहीं पर असंतुलन पा रहा
है. तो आपने संतुलन का उसी पर ही फोकस दिया है. कैसे कैसे मिलता है स्टूडेंट. Oh, okay.